Krishna, 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 Hare Hare. हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा सत्यस्य सत्यामृतस्य नेत्रं सत्यस्य सत्य सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृतसत्यनेत्रं सत्यस्य सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना सत्यात्मकं त्वां सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यात् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना
सत्यं व्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं
सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना
माता
सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना
ठीक है, धन्यवाद। शब्दार्थ इस प्रकार के हैं,
सत्यव्रतम।
भगवान जो अपने व्रत से कभी विचलित नहीं होते,
सत्य परम।
परम सत्य, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा गया है, सत्यम परम धीमहि। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, सत्यम परम धीमहि, त्रि सत्यम। वे इस जगत की सृष्टि पालन तथा इसके संहार के बाद भी परम सत्य के रूप में विद्यमान रहते हैं। वे इस जगत की सृष्टि पालन तथा इसके संहार के बाद भी परम सत्य के रूप में विद्यमान रहते हैं। सत्यस्य परम सत्य कृष्ण योनिम कारण निहितं प्रविष्टः च तथा सत्ये। इस जगत को उत्पन्न करने वाले कारणों, जैसे कि पंच तत्व क्षिति जल पावक गगन समीरा, सत्यस्य सत्य माने जाने वाले का, सत्यम भगवान जो आदि सत्य हैं, दृत सत्य नेत्रम अच्छे लगने वाले सत्य के उद्गमन, सत्य आत्मकम भगवान से संबंध हर वस्तु सत्य हैं। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री भक्ति योगान स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। देवताओं ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप अपने पूर्ण व्रत से कभी विचलित नहीं होते, क्योंकि आप जो भी निर्णय लेते हैं वह पूरी तरह सही होता है और किसी के द्वारा रोका नहीं जा सकता। सृष्टि पालन तथा संहार जगत की इन तीन अवस्थाओं में वर्तमान रहने से आप परम सत्य हैं। कोई तब तक आपकी कृपा का भाजन नहीं बन सकता जब तक वह पूरी तरह आज्ञाकारी न हो, अतः इसे दिखावटी लोग प्राप्त नहीं कर सकते। आप सृष्टि के सारे अवयवों में असली सत्य हैं, इसलिए आप अंतर्यामी कहलाते हैं। आप सबों पर संभाव रखते हैं और आपके आदेश प्रत्येक काल में हर एक पर लागू होते हैं। आप आदि सत्य हैं, अतः हम नमस्कार करते हैं और आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। तात्पर्य, देवता या भक्तगण भली भांति जानते हैं कि चाहे यह भौतिक जगत हो या वैकुंठ लोक, असली वस्तु तो भगवान ही हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम का आरंभ ओम नमो भगवते वासुदेवाय सत्यम परम धीमहि से होता है। वासुदेव कृष्ण ही परम सत्य हैं। परम सत्य ने घोषित किया है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्वतः। परम सत्य को समझने का एकमात्र ढंग है भक्ति। इसलिए देवतागण अपनी रक्षा के लिए परम सत्य की ही शरण में आते हैं, आपेक्षिक सत्य की नहीं। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु परम सत्य कृष्ण ने भगवत गीता में सप्तम अध्याय 23 के श्लोक में कहा है, अंतवंतु फलम तेषाम तद भक्ति अल्पमेधसाम। अल्पज्ञ लोग जो देवताओं की पूजा करते हैं और उनके फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा सीमित समय के लिए लाभदायक हो सकती है, किंतु परिणाम होता है नश्वर। यह संसार नश्वर है। और देवता नश्वर हैं, देवताओं से प्राप्त होने वाले वर भी नश्वर होते हैं, जबकि जीव शाश्वत है। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम, हर जीव को नश्वर सुख नहीं अपितु शाश्वत सुख की खोज नहीं चाहिए। सत्यम परम धीम ही सूचित करता है कि मनुष्य को सत्य की खोज करनी चाहिए, स अपेक्ष सत्य की नहीं। भगवान नृसिंह देव की प्रार्थना करते हुए प्रहलाद महाराज ने कहा था, बालस्य नेह शरणम पितरो नृसिंह नारदस्य जाग मुदनवती मंजतो। श्री राधा गिरधारी भगवान की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री गोविंदाय की। सामान्यतया यह समझा जाता है कि बच्चे के रक्षक उसके माता पिता होते हैं, किंतु यह यथार्थ नहीं है। असली सत्य तो भगवान है। तप्तस्य तप प्रतिविध्य इहांज श्रेष्ठ तावद विभो तनुभृतां तदुपेक्षितानां। श्रीमद् भागवत। जिस बालक की अपेक्षा भगवान द्वारा होती है, वह अपने माता पिता के होते हुए भी कष्ट भोगता है। इसी तरह रोगी व्यक्ति सारी चिकित्सा होने पर भी मर जाता है। इसी भौतिक संसार में जहाँ जीवन संघर्ष चल रहा है, लोगों ने रक्षा के अनेक साधन ढूंढ निकाले हैं, किंतु यदि भगवान इनका तिरस्कार कर देते हैं तो ये व्यर्थ हो जाते हैं। इसीलिए देवताओं ने जानबूझकर कहा, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः, हे प्रभु हम आपकी असली रक्षा कर, आप ही हम हमारी असली रक्षा कर सकते हैं, अतएव हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। भगवान चाहते हैं कि लोग उनकी शरण में आए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और वे आगे भी कहते हैं, सकृद एव प्रपन्नो यस्व त्वां इति याजते अभयम् सर्वदा तस्मे दामे तद व्रतम ममः। यदि कोई निष्ठापूर्वक यह कहकर मेरी शरण में आता है कि हे प्रभु आज से मैं आपकी शरण में हूँ, तो मैं उसे सदैव सुरक्षा प्रदान करता हूँ, यह मेरा व्रत है। रामायण युद्धकांड 1833 में एक कोटेशन लिया गया है। देवताओं ने भगवान की स्तुति की क्योंकि कंस तथा उसके सहयोगियों द्वारा सताए गए सारे भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान अपनी भक्तिन देवकी के गर्भ में अब प्रकट हो चुके थे। तो इस तरह भगवान सत्यव्रत की भूमिका अदा करते हैं। तात्पर्य तो बहुत लंबा है, हम यहीं तक पढ़ेंगे। शिल्प उपाद की मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदात्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुरैतं सावधूतं पनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादानुषगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्तं राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरि ऋषभानुस्तुते देवि स्वामी हरिप्रिये। जय श्री वांसाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
महत पाद इमा पुरो विभो निर्माय क्षेते यद मोक्ष पुरुषम् भुङ्क्तेर् गुणान् षोडश षोडशात्मकम् स्वलङ्कृतिष्टम् भगवान् वसांसि मे जयतां सुरतों पङ्गुं मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजो श्रीराधामदनमो हरे कृष्णा। श्री श्री राधा गिरधारी जी के इस पावन पवित्र प्रांगण में श्रीमद् भागवत सत्र में आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। भगवान की अतिक अनुकंपा है, हम यहाँ पर नित्यम भागवत सेवया जो कर रहे हैं प्रतिदिन, और नित्यं भागवत सेवया भगवतीर उत्तम श्लोके भक्तिर भवतीर नैष्ठ की। कलयुग में यही श्रेष्ठ साधन है कि इस प्रकार भागवत को श्रवण करते करते भगवतीर उत्तम श्लोके, जो भगवान है उत्तम श्लोक या तो उत्तम श्लोक के द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे भगवान के श्री चरणों में भक्तिर भवतीर नैष्ठ की निष्ठावान भक्ति प्राप्त होगी। इसी से ये करते रहने से, इसलिए प्रातः स्मरणीय श्री प्रभुपाद जी ने प्रत्येक अपने इस इस्कॉन सेंटर में भागवत का एक पाठ रखा है जिसमें भागवत सुना जाता है, तो हम भी कुछ सुनने का प्रयास करें। उससे पहले आप सब कृपया करके हमें आशीर्वाद प्रदान करें, क्योंकि अब भगवान की कथा तो अथाग है, समुद्र के समान उसे पाना मुश्किल है। और इसमें भी आज का जो श्लोक है जिसमें भगवान को सत्य कहा गया है, और एक बार नहीं, नौ बार सत्य कहा गया है, और उन नौ बार सत्य हैं, उन सभी सत्य का अलग अलग अर्थ, तो मेरे लिए तो एक पहाड़, स्थिति के लिए पहाड़ उठाने बराबर है इस श्लोक की व्याख्या करना। लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि हमको तो कहाँ कुछ करना है, प्रभुपाद ने दिया है प्रपट, उसी से कुछ आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा यथा मति यथा योग्यता। तो सबसे पहले तो ये जो प्रसंग है सुन रहे हम यहाँ पर कि भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ में आ चुके हैं, ये स्थिति है। और ये तो सब जानते हैं कि वो कंस के कारागार जेल में है, तो अष्टम पुत्र के रूप में भगवान स्वयं सबसे पहले वसुदेव जी के मन में आए, और वसुदेव जी के द्वारा वही मन से भगवान को देवकी के मन में दिया गया, और वहीं से भगवान देवकी के हृदय गर्भ में प्रकट स्थित हुए हैं, अब बाहर प्रकट होंगे। तो उससे पहले की स्थिति है कि भगवान जब गर्भ में आए हैं तब वहां पर बड़े बड़े देवता उनकी स्तुति करने के लिए आए हैं। अगले श्लोक में बताया गया है ब्रह्मा भवश्च तत्रेत्य मुनि भीर नारद आदि भी देवे सानुचरह साकम गिर भीर वृषण मेरियन। कहते हैं कि ब्रह्मा सभी देवता भवश्च शिव जी और तत्रेत्य मुनि भीर नारद आदि भी, तो कहते हैं बड़े बड़े मुनि हैं और नारद हैं और आदि भी, और भी बहुत लोग। आदि का अर्थ ही होता है संस्कृत में जब किसी शब्द के पीछे आदि लगाया जाए तो बहुत लोग हैं,
तो फिर आचार्य कहते हैं आदि में कौन कौन है? बोले इसमें तो लिखा है ब्रह्मा जी, शिव जी हैं, नारद जी हैं। तो एक आचार्य लिखते हैं कि सनकादिक आदि मुनियों भी उसमें हैं, क्योंकि मुनि शब्द है। और आदि कहा तो अर्थ है कि दूसरे जो भगवान के अवतार अंश रूप में हैं, कला रूप में, अंश रूप में, विष्णु, वामन इत्यादि, ये सब भी यहाँ पर आए हैं, क्योंकि ये जो है परमेश्वर है। तो ये सब स्तुति करने के लिए भगवान के इस सामने प्रकट है, भगवान अभी गर्भ में है, इसलिए स्तुति का नाम है गर्भस्थ स्तुति। स्तुति शब्द पर भी विचार किया जाता है, क्योंकि भागवत में प्राय सभी भक्तों के द्वारा स्तुति ही है ना। भागवत के प्रारंभ में देखिए कुंती महारानी के द्वारा सुंदर स्तुति है, नमस्ते पुरुषम तो माध्यम ईश्वर प्रकृति परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थितम। इस प्रकार से सभी श्लोकों में स्तुति। तत्पश्चात पितामह भीष्म के द्वारा भी भगवान को बहुत सुंदर स्तुति है, बहुत सुंदर। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रवि कर गौरव रामबरम दधाने वपुर लक कुलावृतान नाभ्यम विजय सखे रतिरस्तु मेन वध्या। इस प्रकार अनेक श्लोकों में स्तुति है, 12 श्लोकों में करीबन। और इससे आगे जाए तो दूसरे स्कंद में भी ब्रह्मा जी के द्वारा भी स्तुति है, तीसरे स्कंद में भी स्तुति है, चतुर्थ स्कंद में ध्रुव महाराज के द्वारा भी है, पंचम स्कंद में भी, और प्रहलाद महाराज के द्वारा स्तुति है सप्तम स्कंद में। तो इस प्रकार से और षष्ठम स्कंद में वत्रासुर के द्वारा सुंदर स्तुति है, अष्टम स्कंद में गजेंद्र जी के द्वारा सुंदर स्तुति है, और नवम स्कंद में देवताओं के द्वारा फिर से स्तुति है, और दसम स्कंद में गोपियों के द्वारा गोपी गीत के रूप में बहुत बड़ी स्तुति है भगवान को प्रार्थना। तो पूरा भागवत इन स्तुतियों से भरा है। इसलिए एक आचार्य हैं जो भाई जी हनुमान प्रसाद फौजदार, उन्होंने एक बुक लिखी है जिनमें केवल स्तुति है भागवत, पूरा बुक। तो मैं कहने जा रहा था कि सभी भक्तों ने प्राय स्तुति की है, क्योंकि इन स्तुति प्रार्थना से भगवान प्रसन्न होते हैं, उनको बड़ा सुख मिलता है। तो हम जो भगवान के सामने कीर्तन करते हैं ये भी एक स्तुति ही है। और इस विषय में एक मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है, स्मरण आ रहा है, एक बार मैं सुना था कुंडल कृष्ण प्रभु से कि एक बार जब कृष्ण हस्तिनापुर में थे पांडवों के साथ, तो अर्जुन जो है वो रोज क्योंकि अब क्षत्रिय था तो शिव जी की उपासना करते थे, तो रोज वो शिव जी को फूल चढ़ाने के लिए जाया करते थे, फूल तो अपनी टोकरी में फूल चढ़ाते थे, और कृष्ण भी उनके साथ जाते थे। तो एक दिन अर्जुन ने देखा कि उस मंदिर से फूल के बड़े बड़े टोली भर भर के निकल रही है, बैलगाड़ी भर भर के फूल मंदिर से बाहर निकल रहे हैं। तो अर्जुन ने कृष्ण को पूछा कि प्रभु ये फूल कौन चढ़ा रहा है इतना सारा, पूरा बैलगाड़ी भर भर के मंदिर से बाहर निकल रहा है, है ना, हम तो यहाँ चढ़ाते तो छोटा सा टोपली में निकलता है एक दिन में कम से कम, वो तो पूरा बैलगाड़ी भर भर के निकल रहा है। तब कृष्ण ने कहा कि अर्जुन देखो ये जो है भीम भैया फूल चढ़ाते हैं। अर्जुन कहे अरे भीम को तो मैंने कभी मंदिर जाते हुए देखा नहीं, और कैसे चढ़ाते हैं? तब कृष्ण ने कहा कि वास्तव में भीम भले ही मंदिर नहीं जाता है, वो अपने घर पे ही भगवान को इतनी सुंदर सुंदर स्तुति करते हैं कि वो स्तुति ही फूल बन जाती है, फूल बन जाती है। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि वास्तव में ये स्तुति भी भगवान को फूल अर्पण करने के बराबर, इसलिए विशेष। तो अर्जुन का तो छोटा सा टोपली था, लेकिन भीम के लिए स्तुति करने से वो सारे फूल बन जाते, भगवान को अर्पण हो जाते। तो मैं कहने जा रहा था कि भगवान की स्तुति, क्योंकि भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। क्या क्या बताएं इसके बारे में? जब कुंती महारानी ने स्तुति की तब भगवान अब द्वारका जाने के लिए रवाना हो चुके थे, यद्यपि है ना, भगवान महाभारत के युद्ध पर्यंत वहां पर रहे और अब वो अपने घर लौट रहे थे, क्योंकि घर पे 16,108 पत्नियां रानियां थी, उनके बच्चे थे, तो उनको भी तो सुख देना है, उनके साथ भी तो रहना है। तो अब तो उन्होंने कहा कि अब मैं जा रहा हूं, अब तो युधिष्ठिर को राज्य मिल गया है, आप सुरक्षित हो। तब उत्तरा का प्रसंग आता है ना, उसमें भगवान उत्तरा के गर्भ में जो अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र से भगवान परीक्षित की रक्षा करते हैं। तब फिर कुंती महारानी स्तुति करते हैं, तो कुंती महारानी की स्तुति सुन करके भगवान थोड़े समय के लिए और रुक जाते हैं। यद्यपि इस भगवान को बल से पकड़ पाना मुश्किल है, मान लो किसी की इच्छा हो जाए कि ये बहुत सुंदर है भगवान, इसको हम पकड़ लें, घर पे पकड़ कर रखें, तो वो नहीं रह सकते, किसी के जबरदस्ती से नहीं रह सकते हैं। लेकिन कुंती की इतनी सुंदर स्तुति सुनकर, प्रार्थना सुनकर भगवान थोड़ा समय और रुकते हैं। तो इसी से हमें पता चलता है कि क्या महिमा है स्तुति की, सुनने के लिए खड़े रह जाते हैं। और हमारे आचार्यों ने भी इस प्रकार भजनों में बहुत बहुत स्तुतियां गाई हैं, और हम सबको भी चाहिए उसी को गाना चाहिए, अपने मन के भाव को भगवान के सामने व्यक्त करना, प्रार्थना करना, उसकी स्तुति कहते हैं। तो हो सकता है कभी कभी हमारे मन से कुछ न निकले, तो फिर जिन आचार्यों ने गाया है जो भजनों में, भक्तिविनय ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर और जयदेव गोस्वामी ने जो गाया है ना, जगन्नाथ जी उसे बहुत पसंद करते हैं, आप सब जानते हैं इन सब लीलाओं को, कि जगन्नाथ जी सुनने के लिए खड़े रह जाते थे। एक बालिका जब वन में गा रही थी तो जगन्नाथ जी अपने स्थान से भाग जाते थे सुनने के लिए। कौन सा है पद आज आपको? शीत कमला कुछ मंदन है, भव कंचन है, कलित ललित वन माल, जय जय देव हरे। तो इस प्रकार से अनेक भक्तों के द्वारा भगवान सुनने के लिए खड़े रह जाते हैं, वहां से फिर एक पद भी आगे नहीं बढ़ते। तो ये स्तुतियों में इतना पावर है, भगवान इसे बहुत प्रसन्न करते हैं। और यहां भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए देवताएं स्तुति करने के लिए वसुदेव और देव की जो जेल में है वहां पर सभी देवता आए हैं और भगवान को बहुत सुंदर स्तुति करते हैं। और उन्हीं में से एक श्लोक जो हम यहां पर थोड़ा प्रयास करेंगे, सत्यव्रतम। वैसे तो 9 बार सत्य है और अलग अलग सत्य का अलग अलग अर्थ है, लेकिन सबसे पहला जो शब्द है सत्यव्रतम, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान को ही सत्य कहा गया है क्योंकि भगवान ही सत्य है, उसकी व्याख्या दूसरे में आएगी, लेकिन पहले कहते हैं कि भगवान का व्रत सत्य है। भगवान सत्य व्रती है, अर्थात वो जो व्रत लेते हैं वो सत्य हैं। तो ये भी प्रश्न हो कि भगवान कौन सा व्रत लिए हैं, जैसे संसार में लोग बहुत प्रकार के व्रत धारण करते हैं, है ना, संसार में लोग अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए देवताओं का व्रत लेते हैं, कुछ मौन व्रत लेते हैं, हैं? और कुछ लोगों ने तो गृह व्रत धारण करके रखा है कि घर परिवार का पालन करना यही हमारा व्रत है, यही जीवन है। तो ऐसे व्रत से क्या होता है, अदांत गोभीर वसिताम तमिश्रम पुनः चर्वित चर्वणा नाम, इन्हीं संसार के विषयों को फिर से चबाए हुए को जैसे फिर से चबाया जाता है लेकिन उसमें कोई रस नहीं है, वैसे ये व्रत में केवल दुख ही दुख है, उसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई रस नहीं है। लेकिन यदि कोई भगवान के भजन करने का व्रत लेता है तो उसे भागवत में सुव्रत कहा गया है, जो सबसे श्रेष्ठ व्रत है, और उसमें सबसे श्रेष्ठ व्रत है भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन करना, उनका जप करना, हरे कृष्णा तो भगवान कृष्ण को ही सत्य कहा गया और भगवान सत्य व्रत है। तो लोगों ने गृह व्रत धारण के रखा है, कर रखा है, कई प्रकार के व्रत है संसार में। तो जैसे हम व्रत लेते हैं भगवान भी कुछ व्रत लिए हैं, तो हमें ये तो सुना कि भगवान सत्य व्रत है, वो जो व्रत लेते हैं उसे पूरा ही करते हैं, वो सत्य होता है। तो फिर भगवान ने कौन से व्रत लिए हैं वो हमें जानना है। तो गीता में भगवान दो श्लोकों में व्रत का करते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनम् सृजाम्यहम्। भगवान ने एक व्रत लिया है कि जब जब इस पृथ्वी पर भार बढ़ जाएगा, पाप भूमि से भारी, इस भूमि पर किसी व्यक्ति का भार नहीं लगता है, न तो किसी बिल्डिंग का भार लगता है, तो भूमि को किसका भार लगता है, पाप भूमि से भारी, जो कोई व्यक्ति पाप कर्म करता है वही इस पृथ्वी को भार लगता है। और पाप कब होता है, जब अधर्म फैल जाता है, अधर्म का साम्राज्य आता है, लोगों पर अधर्म हेवी हो जाता है, तब लोग पाप करते हैं। तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर, और इस पाप के कारण, अधर्म के कारण धर्म को ग्लानि होती है, दुख होता है, है ना। जैसे हम सुने ना भागवत के प्रारंभ में, स्वयं धर्म बेल के रूप में खड़ा था और जिनके तीन पैर कट गए थे, और परीक्षित महाराज ने देखा कि तुम कौन हो, तो वो तो कुछ बोले नहीं, किसने काटा पूछा, लेकिन चल गया कि ये तो साक्षात धर्म है। तो क्यों पैर कट गए, क्योंकि कलयुग आया और अधर्म का साम्राज्य आ गया, इसलिए इस अधर्म ने धर्म के पैर को काट दिए गए। और आज भी कहा जाता है कि धर्म के चार पैर हैं, कौन से हैं, सत्य, दया, पवित्रता और तपस्या, और इन्हीं के विरुद्ध में चार नियम हम जो पालन करते हैं, जानते हैं आप सब। तो और आज धर्म का ऐसा कहा जाता है कि एक ही पैर है, वो है दया, भागवत के अनुसार। तो इस प्रकार से धर्म अधर्म जब फैल जाता है तो धर्म की हानि होती है, और ऐसी जब स्थिति पृथ्वी पर आती है तब भगवान कहते हैं कि मैं इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ, अधर्म का विनाश करता हूँ और धर्म की स्थापना करता हूँ। ये भगवान का व्रत है। और दूसरे श्लोक में कहते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय सुदुष्कृताम धर्म संस्था स्पर्थाय संभवामी युगे युगे। तो कहते हैं परित्राणाय साधुनाम, मैं सदैव मेरे भक्तों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहता हूं। परित्राणाय साधु नाम। भगवान इस संसार में आते हैं तो अनेक सारे प्रयोजन होते हैं, लेकिन उनमें से एक प्रयोजन वो कह रहे हैं मेरे भक्तों का परित्राण करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। अब परित्राणा का एक अर्थ होता है रक्षा करने के लिए, लेकिन परित्राणाय उनको तारना है। किसको तारना है? भक्त को। तो क्या जो भक्त बनता है वो तैर नहीं जाता है? तो इसका अर्थ आचार्यगण करते हैं कि भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं, यद्यपि हम जो सब है भक्त हैं, हमें समझ रहे कि हम भक्त हैं और प्रारंभिक भक्ति में थोड़े थोड़े लगे हैं, तो फिर अब इतनी भक्ति से तो भगवान के धाम में पहुंच नहीं सकते हैं। तो फिर भगवान पृथ्वी पर आकर ऐसी लीला करते हैं, ऐसे अद्भुत चरित्र करते हैं कि जिनको हम श्रवण करते हैं और इसी से हमारी भक्ति का पोषण होता है, और ऐसे भगवान भक्तों का परित्राण करते हैं। तो इसीलिए भगवान आता है, परित्राण है साधुनाम। और परित्राण का दूसरा अर्थ करते हैं कि भक्तों को आनंद देने के लिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं, या तो अन्य जगह पर भी भागवत में कहा गया है कि भगवान तो कहते हैं कि मैं बिना चाहे से दुष्कृता हूं, मैं दुष्टों का विनाश करने के लिए आता हूं, लेकिन भक्त तो कहते हैं कि हम इस बात को नहीं मानते क्यों? बोले यदि आपको किसी का बिना चाहे से दुष्कृता दुष्ट लोगों का विनाश करना है तो आप तो अपने धाम में बैठे बैठे भी सबको मार सकते हैं, संकल्प मात्र से। क्योंकि यहां पर कहा गया है सत्य व्रतम, आप सत्य संकल्प हो, आप संकल्प लेते ही सत्य हो जाता है, तो फिर आपको यहां तक कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है दुष्टों को मारने के लिए, है ना। तो आप, हम ये बात को नहीं मानते, भक्त ऐसा कहते हैं, तो फिर क्यों आते हैं हमें? भगवान पूछे तो भक्त कहते हैं कि आप केवल अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं, बस अपने भक्तों को सुख देने के। और इसका उदाहरण यदि हम समझना चाहें तो प्रहलाद महाराज की प्रहलाद महाराज के चरित्र से हमें पता चल सकता है, है ना। क्योंकि प्रहलाद महाराज के जीवन में बहुत सारे कष्ट आए, उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने बहुत कष्ट दिया, है ना, उसको बार बार मारने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो नहीं मरे। तो फिर वहां पर अब कौन रक्षा कर रहा था उन सब चीजों से? भगवान ही तो कर रहे थे। जब उनको पहाड़ों से फेंका गया समुद्र में तो भगवान ही तो उनकी रक्षा करते थे। जब उनको हाथी के नीचे कुचलवाया गया तब भगवान ने ही उनकी रक्षा की। गरम गरम तेल में डाला गया तब वो फूल बन गए। होलिका में डाला गया तो होलिका जिनको वरदान था देवताओं का वो जलकर भस्म हो गई, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। तो ये सब तो भगवान वहां बैठे बैठे कर रहे थे। तो हिरण्यकश्यपु को मारना भी कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए, वो यहां बैठे बैठे कर सकते हैं। तो फिर क्यों आए? भक्तों को आनंद देने के लिए, या तो भक्तों के वचन को सत्य करने के लिए। प्रहलाद ने कहा कि जब हिरण्यकश्यपु के द्वारा पूछा गया कि क्या इस खंभे में भगवान है, और प्रहलाद ने कहा हाँ, तो उसी बात को सत्य करने के लिए, सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम, अपने भक्तों के वचन को सत्य करने के लिए, उसको आनंद देने के लिए भगवान वहां प्रकट हो गए उसी खंभे से। तो इस प्रकार से भगवान आते हैं अपने भक्तों को परित्राणाय साधु नाम बिना चाहे धर्म संस्थान पर था संभवामी युगे। तो इस प्रकार भगवान के व्रत हैं। अब और भी एक सुंदर व्रत की बात प्रभुपाद जी रामायण से कोटेशन कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि भगवान का और एक बहुत सुंदर व्रत है। भगवान श्री रामचंद्र स्वयं अपने मुख से कहते हैं, सकृद एव प्रपन्नो यस्तवात्म इति च याचते अवयम सर्वदा तस्मे ददाम्येतद् व्रतम ममः।
भगवान अपने मुख से बोलते तद व्रतम ममः, मेरा ये व्रत है। क्या व्रत है आपका?
सकृद एव,
सकृद का अर्थ होता है कि एक बार, बार बार नहीं,
एक बार यदि कोई अपने मन से दिल से कह देता है, क्या कह देता है,
यस त्वास्म इति अहम त्वाम इति,
एक बार मंदिर भगवान कहते हैं कि ठाकुर जी कहते हैं, मेरे सामने आकर कोई कह देता है कि हे प्रभु मैं आज से आपका हूं,
बस एक बार ऐसा सक्री देव
कह देता है,
याद से वो बोल देता है,
तब क्या होता है, भगवान कहते हैं अभयम सर्वदा पश्य,
मैं उनको अभय प्रदान कर देता हूं,
ये मेरा व्रत है।
तस्मे ददामि एतद् व्रतम ममः,
उनको अभय प्रदान कर देता हूं, ये मेरा व्रत है। और यहां पर कहा गया है सत्य व्रतम,
भगवान सत्य हैं, है?
तो भागवत प्रमाण है,
इसे हम सुनते हैं लेकिन इन बातों पर ठीक ठीक से समझकर इस पर पूरा विश्वास करना चाहिए
कि जब भगवान को हम अपने आप को सौंप देते हैं
तो भगवान उस भक्त को निर्भय कर देते हैं,
उनका सारा भार भगवान अपने हाथ में ले लेते हैं,
फिर उस भक्त को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं चिंता करनी चाहिए,
क्योंकि भगवान का ऐसा व्रत है और भगवान सत्य व्रत है, भागवत में लिखा है, भागवत प्रमाण है, प्रमाणम ममलम।
तो फिर इस प्रकार भगवान पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास करके है?
और चिंता न करते हुए भगवान का प्रेम से भजन करना चाहिए, हरे कृष्णा
और भगवान ने इस जो अपना व्रत है उनको बार बार पूरा किया गया है।
और हमारे इतिहास में अनेक भक्तों के जीवन चरित्र से ये बात पता चलती है,
ऐसा नहीं है कि केवल कहा गया है तो कहा गया है,
भगवान उसे पूरा करते हैं।
अभयम,
और भगवान जब कोई भक्त भगवान को समर्पण कर देता है, अपने आप को कह देता है कि मैं आपका हूं, फिर उनके जीवन के पूरे जीवन की जो सारी जो जिम्मेदारी है वो भगवान अपने हाथ में ले लेते हैं।
और वैसे भी तो भगवान ने ही ली है, हम तो खामोखा ये भ्रम में है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, है ना, हम हमारा जीवन चला रहे हैं, हम हमारा परिवार चला रहे हैं, ये सब भ्रम में और अभिमान अहमता में हम लोग हैं, लेकिन रियल में तो सब का भरण पोषण वही करते हैं, वही करते हैं।
संसार के सभी प्राणियों सभी जीवों का
सभी छोटे छोटे जीवों का भी भरण पोषण भगवान समय समय पर कर देते हैं,
क्योंकि वही सबके परम पिता हैं।
तो इन बात पर विश्वास रखते हुए हमें भगवान का भजन करना चाहिए और चिंता न करते हुए।
तो सत्य व्रतम,
फिर आगे कहते हैं सत्य परम, पहला शब्द है सत्य व्रतम और दूसरा है सत्य परम।
वैसे तो सत्य किसे कहा जाता है, बोले तीनों काल में जो सत्य रहे,
है ना, भूत भविष्य वर्तमान और भविष्य में,
जैसे संसार जो है वो सत्य नहीं है, तो उपज तात्पर्य में लिखे हैं ये नश्वर है, क्योंकि आज जो चीज दिखाई दे रही है कुछ समय पहले नहीं थी,
आज जो हम बता रहे हैं कि हमारी उम्र इतनी है तो आज के लिए वो सत्य हो सकता है लेकिन भविष्य में वो गलत हो जाएगा, उम्र बढ़ जाएगी।
आज जो हमारा रूप है, हम कैसे हमारा ऐसा रूप है, लेकिन आप पीछे चले जाइए, आपके 10 साल पहले का फोटो देख लीजिए, सत्य नहीं है। वैसे ही संसार में समझ लिए कुछ भी चीज सत्य नहीं है, क्योंकि भविष्य भूतकाल में कुछ था, आज कुछ भूतकाल में जो था वो आज नहीं है, और आज जो है भविष्य में नहीं रहेगा। तो ये शरीर सत्य नहीं है, संसार सत्य नहीं है, नश्वर है, लेकिन जीव सत्य है, चेतन चेतनानाम। जैसे भगवान सत्य है वैसे जीव भी सत्य है, क्योंकि वो भी नाश, उनका नाश नहीं होता है। इसलिए भगवान गीता में भी एक जगह पर कहते हैं, जब युद्ध के प्रारंभ में ही भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम शोक मत करो, क्योंकि ये जितने भी राजा हैं वो भविष्य में, मतलब वो जीवात्मा के रूप में भविष्य में थे, आज भी है, भूतकाल में थे, आज भी है, भविष्य में जीवात्मा सब रहेंगे, तुम भी रहोगे, मैं भी रहूंगा। लेकिन ये जो दूसरा जो सब दिखाई रहा है माया, वो कुछ नहीं है, वो कुछ सत्य नहीं। तो भगवान सत्य है, क्योंकि भगवान तीनों काल में स्थित हैं, भूतकाल में भी थे, आज भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे। और वैसे जीवात्मा भी, इसीलिए तो जीवात्मा और भगवान का ही रियल कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ तो कोई इस शरीर से कोई कनेक्शन नहीं है। भगवान भी तीनों काल में रहते हैं, जीवात्मा भी तीनों काल में रहते हैं, इसीलिए उनका कनेक्शन हो सकता है, उनका प्रेम हो सकता है। और इसी को कहते हैं सनातन, हम जो कहते हैं ना सनातन धर्म, क्योंकि ये सनातन है, जिसका न आदि है न अंत है। जब ये भगवान है और भगवान के द्वारा निर्मित जीव है, तो वो जीव का नित्य भगवान के साथ संबंध है, नित्य उनका धर्म है भगवान की सेवा करना, क्योंकि भगवान ही परम सत्य है। अब इसके बारे में और भी कहते हैं कि जैसे संसार में और जो देवता है, ब्रह्मा है, शिव है, देवता है, ये सब है, लेकिन वो भी परम सत्य नहीं है, उसका भी समय समय पर नाश हो जाता है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो लोग अल्प मेधसा, अल्प बुद्धि वाले हैं, गीता में भगवान कहते हैं, वो जो है मेरी शरण में नहीं आते हैं। काम है तत्त ज्ञान, जो जिनका कामना है भौतिक संसार के, भौतिक सुख चाहिए, भौतिक वस्तु चाहिए, भगवान कहते हैं वो मेरी शरण में नहीं आते हैं। वो देवताओं की शरण में जाते हैं, और देवता उनको देते भी हैं, कुछ धन दे देते हैं, कुछ शरीर की सुविधा दे देते हैं, लेकिन उसी से क्या होगा, बोले समय पर तो वो देवता भी चले जाएंगे, वो सुविधा भी चले जाएंगे, वो कायम रहने वाली चीज नहीं दे सकते, क्योंकि वो परम सत्य नहीं है। और भगवान परम सत्य है, इसलिए वो कायम रहने वाली चीज दे सकती हैं। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि परम सत्य की खोज करें। परम सत्य कौन है, उसी की खोज में रहना चाहिए। और वास्तव में परम सत्य है भगवान श्री कृष्ण। और इसी शब्द पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सत्यम परम धीमहि, जो भागवत के प्रारंभ में मंगलाचरण में आया है, कि उन परम सत्य का मैं ध्यान करता हूं। और सहज ही पता चलता है कि सभी देवता, शिव, ब्रह्मा, अन्य अवतार भी वहां पर भगवान की स्तुति करने के लिए आए हैं, तो इसका अर्थ सहज समझ में आता है कि यही परम सत्य है, यही परम सत्य है। और ब्रह्मा जी भी इस बात को ब्रह्म संहिता में कहते हैं ना, ईश्वर परम कृष्ण, परम शब्द लगाते हैं, सच्चिदानंद विग्रहम अनादिरादिर गोविंदम सर्वकारण कारणम। सभी तो सत्य परम भगवान, सभी सत्य जो है उनके परम सत्य है। त्रिसत्यम उसका अर्थ यही होता है कि तीनों काल में वो सत्य रहते हैं। सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, और वही सभी सत्यों के कारण है। मान लो संसार में कुछ सत्य हमें दिख रहा है, या तो त्रिभुवन में जो कुछ सत्य है, उन सभी सत्य के कारण भगवान ही है। मान लो हम ये विचार करें कि ब्रह्मा भी सत्य है, ये जीव सत्य है, तो इन सभी सत्यों का कारण भी भगवान ही है, क्योंकि आदि पुरुष हम, ये आदि पुरुष हैं, इसी से सब कुछ निकलता है। अर्थात उसके पहले कोई नहीं था है? और उसके बाद भी कोई नहीं है। उसके बाद हम हैं, लेकिन वही रहेंगे। जब प्रलय का समय होता है तो भगवान ही रहते हैं और सारा जो चीज है भगवान के अंदर चला जाता है। तो इसलिए सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपद्ये। और कहा गया है कि जो जो अच्छी चीज सत्य चीज जो निकलती हैं, उसके उद्गमन स्थान भगवान ही हैं। और या तो वहां पर कहने का अर्थ है कि भगवान के अलावा कोई भी सत्य टिक नहीं सकता, और जहां पर सत्य है तो समझो कि भगवान है, तभी तो किसी के जीवन में सत्य है। और द्रौपदी जी यहां पर कहते हैं कि हम यदि इन परम सत्य को पाना चाहते हैं तो हमें भी हमारे जीवन में सत्य का आचरण करना होगा, सत्य का आचरण करना होगा। और सत्य का आचरण हमारे जीवन में भी करना है, भगवान की आज्ञा के अनुसार जीवन जीना है, भक्ति पूर्वक जीवन जीना है, और उसी के साथ साथ भगवान के नाम को भी सत्य कहा गया है। तो सत्य का आचरण सबसे श्रेष्ठ यही है कि भगवान के नाम को जप किया जाए, भगवान के नाम को पुकारा जाए, हरे कृष्णा हरे। तो इस प्रकार हम हमारे जीवन में हरिनाम रूपी सत्य का आचरण करते रहेंगे तो एक न एक दिन भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, और वो भी कौन भगवान, परम सत्य की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार अब देवता आगे कहते हैं कि सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। इसीलिए हे परम सत्य, सत्यात्मकम, और एक शब्द दे रहे हैं सत्यात्मकम। आत्मकम का अर्थ होता है स्वयं, और स्वयं का अर्थ होता है इस शरीर को भी कभी आत्म कहा जाता है ना, आत्मज, इसलिए पुत्र को आत्मज, इस शरीर से जन्म हुआ मानते हैं। तो कहने का यह है कि आपका सब कुछ सत्य है, सत्यात्मकम, आपका शरीर भी सत्य है। ऐसा नहीं कि जैसे हमारा शरीर नश्वर है तो भगवान का भी नश्वर, भगवान ही सत्य नहीं, भगवान का शरीर भी सत्य है। अब उनमें वो और एक श्लोक कोटेशन करते हैं, ऐश्वर्य समग्र वीरस्य यशस्त्रिय ज्ञान वैराग्य सड़ भग इति गना। जो भगवान की व्याख्या में एक श्लोक दिया जाता है कि जो छह ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है उसे भगवान कहते हैं, जिनके पास पूर्ण धन ऐश्वर्य हो, जिनके पास पूर्ण यश हो, जिनका पूर्ण सौंदर्य हो, जिनका पूर्ण बल हो, और जिनके पास पूर्ण वैराग्य है, पूर्ण ज्ञान है, इन से चीज से पता चलता है कि भगवान है। तो ये सत्य इन सब के साथ लगाया जाता है, सत्यात्मकम। आपका जो बल है वो भी सत्य है, वो कभी कम नहीं होता है, जीव का बल तो कम हो जाता है। और आपका धन है वो भी सत्य है, संसार का धन तो कभी भी चला जाता है, और भगवान का धन तो सत्य का सत्य बना रहता है, चाहे वृंदावन हो, मथुरा हो, या फिर द्वारका हो, है ना। भगवान का कितना धन है हम सब परिचित है इनमें चीजों से, क्या संपत्ति है उनके पास। तो आपका धन भी सत्य है, आपका बल भी सत्य है, और आपका सौंदर्य भी सत्य है, है ना। हमारा सौंदर्य सत्य नहीं है, पहले मैंने बताया ना, कुछ समय पहले कुछ अलग रूप था, आज कुछ अलग है, और जब बूढ़े हो जाएंगे तो बिल्कुल चला जाएंगे। लेकिन भगवान हर स्थिति में उनका रूप सत्य है, इसीलिए वही का वही बना रहता है। श्याम सुंदर नवयौवनम च, निरंतर युवान ही बने रहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यद्यपि आप सबके आदि हैं, लेकिन फिर भी नवयौवनम च, नित्य नवीन नवीन रूप आपका होता है, और निरंतर किशोर अवस्था में विशेष करके भगवान रहते हैं। तो भगवान का सौंदर्य भी सत्य है। अब इन चीजों पर तो बहुत बहुत व्याख्या हो सकती है। फिर भगवान का ज्ञान सत्य है ना? लोग जो ज्ञान देते हैं तो सब फेल हो जाता है, लेकिन आज तक भगवत गीता जो है 5-5.5 हजार वर्ष पहले भी कही गई थी, और उसके पहले भगवान ने सूर्य को भी ज्ञान दिया था, वही ज्ञान गीता आज सूर्य के समान पूरे विश्व में चमक रही है वो ज्ञान, और उसी ज्ञान को प्राप्त करके लोग अपना जीवन भगवत समर्पण कर सकते हैं, और उसी से सुख शांति और सत्य भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान का ज्ञान भी सत्य है, और वैराग्य, भगवान में वैराग्य भी है, उनका वैराग्य भी सत्य है, क्योंकि कितना भी, अब इसकी व्याख्या भागवत के प्रारंभिक श्लोक में कही गई है, जहां पर प्रारंभिक जो श्लोक है उसमें कहते हैं कि भगवान, और भागवत के प्रारंभिक श्लोक में भगवान को प्रणाम किया गया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो उस श्लोक में इसकी व्याख्या करते हैं कि भगवान सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है और विश्व की उत्पत्ति करते हैं, उनका पालन करते हैं और उनका संहार करते हैं। तो फिर भी भगवान को उत्पत्ति का अभिमान नहीं है कि मैं उत्पन्न कर रहा हूं। इन 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 सब दोषों से भगवान मुक्त हैं, और जब पालन करते हैं तो उनको ये भी मोह नहीं है कि मैं पालन कर रहा हूं, और जब वही संहार करते हैं लेकिन फिर भी उनको उसमें कोई दुख नहीं होता है, क्योंकि वो अपने आप को कर्तापन मानते नहीं, पूर्ण वैराग्य में रहते हैं। तो भगवान का वैराग्य भी पूर्ण है, और कभी कभी युग अवतार में यानी वैराग्य का आचरण भी करके जगत के जीवों को दिखाते हैं, और भक्तों ये वैराग्य ही, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम, चैतन्य महाप्रभु यही हम सबको सिखाने के लिए हैं। तो भगवान का तो पूर्ण है, लेकिन हम थोड़ा सा भी वैराग्य जीवन में धारण करें तो बहुत सुखी हो सकते हैं, बहुत। और जब वैराग्य विवेक ये सब प्राप्त होता है तभी सब सत्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो सत्यात्मकम कहते हैं कि आपका शरीर भी सत्य है, आपका ज्ञान भी सत्य है, आपका वैराग्य भी सत्य है, आपका रूप सत्य है, आपका सौंदर्य सत्य है, आपका बल सत्य है, और आपका नाम भी सत्य है। लोग इस बात को बोलते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते हैं। कोई जब मर जाता है तो तब याद करते हैं, है ना, राम नाम सत्य है, यही सत्य है, बाकी तो सब चला जाता है। इसीलिए हम सबको चाहिए कि इसी सत्य की सराहना, इसी सत्य की आराधना करें, क्योंकि आखिर में आज भी यही साथ में रहेगा और जीवन के बाद यही साथ में रहेगा, बाकी जो सब है चला जाता है। किसी ने एक बहुत सुंदर गाया है कि लूट लो जिनका दिल चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली, दुनिया दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा कि माल खजाना जो सब कुछ यहीं पड़ा रह जाएगा, यही एकमात्र सत्य आपके साथ आएगा। तो इसीलिए हमें इनसे यही ज्यादा से ज्यादा लेनी है सीख कि हम परम सत्य भगवान का जो परम सत्य नाम है, उसी को जीवन में गुनगुनाया करें, उसी को जीवन में प्रेम से लिया करें। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, और इस परम सत्य का नाम लेने से हमें जो सुख मिलेगा वो भी परम सत्य मिलेगा। हम सब जीवात्मा है, इसलिए हमारी सुख की जो कामना है, हमारी जो डिमांड है, कैसा सुख चाहिए? कायम रहने वाला। आज संसार में भी सब लोग कायम रहने वाला सुख चाहिए, सबको कायम रहने वाला आनंद चाहिए, लेकिन इसके लिए उपाय संसार में नहीं है। तो भगवान जी कहते हैं कि यद्यपि लोग इसके लिए बहुत उपाय कर लेते हैं, संसार में साधन बनाते हैं कायम रहने वाले सुख को बनाने के लिए, लेकिन ये सुख मात्र जो परम सत्य हैं, उन्हीं की भक्ति करने में, उन्हीं की आराधना, उन्हीं की सेवा और उनके नाम लेने में मिलती हैं, मिलता है, मिलता है सच्चा सुख भगवान। भगवान की बातों में, भगवान के रूप में, भगवान की भक्ति में परम सुख का प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार हमें भगवान के परम सत्य नाम को लेते रहना चाहिए और अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम सबका धन्यवाद। आपने धैर्य पूर्वक सुना, इसी के रिलेटेड कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जिज्ञासा ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की उपाद की निदाय गौधरी प्रेम।